प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर भारत में मंत्रिमंडल प्रणाली की सरकार कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने के कारण प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पढ़ा है कि मंत्रिमंडल प्रणाली सरकार में नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष में अंतर किया जाता है। राज्य का अध्यक्ष नाम मात्र के कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाता है, जबकि मंत्रिमंडल जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है वास्तविक कार्यकारी प्रमुख की भूमिका निभाता है। वास्तव में समस्त राज्य प्रबंध प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है तथा राज्य प्रबंध का कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जा सके। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका को देखते हुए ही रिचर्ड क्रॉसमैन ने इसको प्रधानमंत्री प्रणाली की सरकार प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कहा है। भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए डॉ बी आर अम्बेडकर ने कहा था, यदि हमारे संविधान में किसी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ की जा सकती है तो वे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं। इफ एनी फंक्शनरी अंडर आर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी कम्पेयर्ड विद द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ही इज द प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेजिडेंट। डॉ बी आर अम्बेडकर। कई स्थितियों में तो हमारा प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से भी आगे है। प्रधानमंत्री की महत्ता का वर्णन करते हुए कई व्यक्ति इसको कैबिनेट के स्तंभ का नींव पत्थर, की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क, राज्य रूपी जहाज चालक, कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, तारों में चांद, मून अमंग स्टार्स, सूर्य जिसके गिर्द सभी उपग्रह घूमते हैं, सन अराउंड विच ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स, और धुरी जिसके गिर्द समस्त राज्य प्रबंध घूमता है, पिवट राउंड विच द होल एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स, आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। संविधान की धारा 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट - इससे स्पष्ट है कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वतंत्र है और वह जिसे चाहे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। वास्तविक स्थिति एक्चुअल पोजीशन। लेकिन वास्तविक रूप में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं है। संविधान की धारा 75(3) में स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के सामने उत्तरदायी होगी। अतः जरूरी है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए और आज तक भारत में इस प्रथा का सम्मान किया गया है। 20 मई 2014 को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठजोड़ NDA के संसदीय दल के नेता श्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया गया था, जिनके द्वारा 20 मई 2014 को अपने मंत्रिपरिषद सहित पद और गोपनीयता की शपथ ली गई थी। राष्ट्रपति की सीमित इच्छा लिमिटेड डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी सीमित इच्छा का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि 1) जब लोकसभा में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, अथवा 2) विभिन्न पार्टियां मिलकर मिश्रित सरकार का निर्माण करना चाहें, अथवा 3) प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए, अथवा प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे दे। पेज 167। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति को बड़ी दूरदर्शिता से कार्य लेना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र को स्थिर सरकार प्रदान करना राष्ट्रपति का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति को देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त करने की शक्ति रखता है। 15 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने बहुमत का विश्वास छीन जाने पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। राष्ट्रपति ने लोकसभा में विपक्षी दल के नेता श्री बाईवी चव्हाण को विकल्पित सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, लेकिन 22 जुलाई 1979 को श्री चव्हाण ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि वे सरकार बनाने के असमर्थ हैं। 25 जुलाई 1979 को श्री मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने का अनुरोध किया था। 26 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह का अनुरोध स्वीकार कर लिया और उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चौधरी चरण सिंह को निर्देश दिया कि वे शीघ्र लोकसभा में बहुमत के विश्वास को प्रकट करें। चौधरी चरण सिंह लोकसभा में बहुमत का प्रस्ताव बहुमत का विश्वास प्राप्त करने में असमर्थ रहे तथा उन्होंने 20 अगस्त 1979 को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था तथा राष्ट्रपति को सुझाव दिया कि वह लोकसभा को भंग करके नए चुनाव करवाएं। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की अकस्मात मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा अपनी इच्छानुसार श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। नवंबर 1989 में हुए 9वीं लोकसभा के चुनावों में कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ रही। चुनावों के पश्चात राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय मोर्चे के नेता श्री वीपी सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, परंतु साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि वे 30 दिनों के भीतर भीतर लोकसभा में अपने बहुमत की अभिव्यक्ति करें। 10वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस आई के नेता श्री पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तथा साथ ही उनको 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने का निर्देश दिया था। अप्रैल मई 1996 में हुई 11वीं लोकसभा के चुनावों में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा था। राष्ट्रपति द्वारा 16 मई 1996 को भाजपा संसदीय दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में सबसे बड़े दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था तथा इस प्रकार उनके द्वारा पहले से चली आ रही परंपरा का सम्मान किया गया था। परंतु साथ ही राष्ट्रपति द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी को 31 मई 1996 तक लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्रकट करने के लिए भी कहा गया था। ये देखते हुए कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 28 मई 1996 को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त मोर्चे के नेता श्री एच डी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा श्री एच डी देवेगौड़ा को 12 जून 1996 तक लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्रकट करने के लिए कहा गया था। 11 अप्रैल 1997 को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर सकने के पश्चात श्री एच डी देवेगौड़ा द्वारा प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा 21 अप्रैल 1997 को श्रीन्द्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा श्री इंद्र कुमार गुजराल को 22 अप्रैल 1997 तक लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्रकट करने के लिए कहा गया था। 28 नवंबर 1997 को प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के पश्चात जब राष्ट्रपति ने यह अनुभव किया कि कोई भी दल सरकार बनाने के योग्य नहीं है तो उन्होंने लोकसभा को भंग करके नए चुनाव कराने की घोषणा की। 12वीं लोकसभा में कोई भी दल सरकार बनाने के लिए उचित बहुमत प्राप्त करने में असमर्थ रहा, परंतु राष्ट्रपति द्वारा भारतीय जनता दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में सबसे बड़ा दल होने के कारण और चुनाव से पहले किया गया सबसे बड़ा गठबंधन प्री पोल अलायंस होने के कारण 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। साथ ही राष्ट्रपति द्वारा श्री वाजपेयी को 10 दिनों के अंदर अंदर अर्थात 29 मार्च 1998 तक लोकसभा में बहुमत के विश्वास की अभिव्यक्ति करने के लिए कहा गया था। अतः इस प्रकार कई बार ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें राष्ट्रपति को अपनी इच्छा का प्रयोग करना पड़ता है, परंतु ऐसा करते समय राष्ट्रपति को बड़ी सूझबूझ से काम लेना पड़ता है। 13 अक्टूबर 1999 को प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठजोड़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी और 22 मई 2004 और 22 मई 2009 को प्रधानमंत्री पेज 168 किए गए संयुक्त प्रगतिशील गठजोड़ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के नेता डॉ मनमोहन सिंह को और 26 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठजोड़ एनडीए के नेता श्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश नहीं दिया गया था। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने की शर्त के आधार पर नियुक्त किए गए प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंटेड ऑन द कंडीशन ऑफ सीकिंग कॉन्फिडेंस वोट ऑफ लोकसभा। 1979 तक भारत के किसी भी व्यक्ति को इस शर्त पर प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया था कि वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए जाने के पश्चात निश्चित समय के भीतर लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करेगा। परंतु 1979 के बाद ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद निश्चित समय के भीतर लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त करने की शर्त लगानी पड़ी। नीचे उन प्रधानमंत्रियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त करने की शर्त के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। सीरियल नंबर 1 चौधरी चरण सिंह, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट July 28, 1978, पीरियड फॉर सीकिंग कॉन्फिडेंस वोट 30 डेज, रिजल्ट रिजाइंड विदाउट सीकिंग कॉन्फिडेंस। 2 श्री वीपी सिंह, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट December 2, 1989, पीरियड 30 डेज, रिजल्ट 1 कॉन्फिडेंस वोट, रिपीट 1 कॉन्फिडेंस वोट ऑन December 21, 1989। 3 श्री चंद्रशेखर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट November 10, 1990, पीरियड 10 डेज, रिजल्ट 1 कॉन्फिडेंस वोट ऑन November 16, 1990। 4 श्री नरसिम्हा राव, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट June 21, 1991, पीरियड 4 वीक्स, रिजल्ट 1 कॉन्फिडेंस वोट ऑन June 15, 1991। 5 श्री ए बी वाजपेयी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट May 16, 1996, पीरियड 15 डेज, रिजल्ट रिजाइंड बिफोर वोटिंग ऑन कॉन्फिडेंस मोशन। 6 श्री एच डी देवेगौड़ा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट June 1, 1996, पीरियड 12 डेज, रिजल्ट 1 कॉन्फिडेंस वोट ऑन June 11, 1996। 7 श्री आई के गुजराल, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट April 21, 1997, पीरियड 2 डेज, रिजल्ट 1 कॉन्फिडेंस वोट ऑन April 22, 1997। 8 श्री ए वी वाजपेयी, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट March 19, 1998, पीरियड 10 डेज, रिजल्ट 1 कॉन्फिडेंस वोट ऑन March 28, 1998।